फिर से कहो ओम शांति। पिछले 4-5 दिनों में आपने बहुत कुछ सुना, बहुत ही कुछ देखा भी, बहुत ही कुछ अनुभव भी किया। अब इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है। यहाँ जो हम यहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी एजुकेशन यहाँ मिलती है, उसका लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग्स हियर। आप वापस जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू द ब्रह्मा कुमारीज टीच, व्हाट इज देयर एम, व्हाट विल यू आंसर, क्या जवाब देंगे। रेज योर हैंड इफ यू कैन आंसर वन बाय वन, व्हाट विल यू आंसर, स्पीक लाउडली। ये शांति से रहने का सिखाते हैं। अच्छा, और अच्छा, हम आत्मा है और आत्मा समझ के चलना है, सबको सुख देना है, पहले दूसरों को सुख देना है, तो देना है सुख, आत्मा है। बहुत अच्छा, और आत्मदर्शन। ओके, अच्छा, आपस में मिलना, फैमिली होके रहना, प्यार प्रेम से रहना। अच्छा, बहुत अच्छा, और अच्छा, परम धाम से आए हैं, वापस वहीं जाना है। अच्छा, आप लोग हाँ, जो दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे ये न्यारा है, अलग है। अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ जी, मैं कौन हूं, प्योर प्योर सोल कैसे बने। अच्छा, समथिंग डिफरेंट, हाँ, डिवाइन वर्चूज सिखाते हैं। ओके, यू हैव टू एम्बाइब योर ओरिजिनल क्वालिटीज। ओके, सेल्फ रिकग्निशन। ओके, हाँ, दूसरे अमृत वेला। अच्छा, अमृत वेले का महत्व जाना। ओके, भगवान का परिचय, चलो बहुत अच्छा, हाँ, गुड कैरेक्टर। अच्छा, सत्कर्मा, परमात्मा एक है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यू वॉन्ट टू से समथिंग, व्हाट, स्पीक लाउडली। लर्निंग थिंग्स अबाउट आत्मा, हाउ टू स्प्रेड इन अवर एरियाज। ओके ओके, वेरी गुड गुड गुड, इनफ इनफ, वेरी नाइस। सत्संग में रहना। अच्छा, मानव को देव बनाना। अच्छा, मानव को देव बनाने की विधि बता। अच्छा, हाँ, प्यार से बोलना। ओके ओके, वेरी गुड, इनफ, हाँ इनफ, बहुत हो गया, बहुत अच्छा। कर्मा फिलोसॉफी। ओके, क्रोध अहंकार से दूर रहना। हाँ, कैसे और ह्यूमन बीइंग से व्यवहार करना। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, बस हाँ,
अच्छा,
अच्छा अच्छा हाँ, भाई बहन नहीं बनाते, उसका अर्थ समझाते हैं। हाँ बताए ना, भाई बहन बनाते हैं। चलो तो बहुत अच्छा सुनाया आप सभी ने। अब इन सब बातों को अगर हम मिलाएं तो हम बता सकते हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव इन टू वर्ड्स, जिसमें सारा सार आ जाएगा, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, डिवाइन वैल्यूज, वर्चूज, कैसे संसार में रहें, कैसे जीवन को पवित्र बनाएं, सुखमय बनाएं, ये जितनी भी बातें आप सब ने कही, इनको हम दो शब्द दे सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है, तो दो शब्द कौन से हैं? एक शब्द है मुक्ति, ये हमारा लक्ष्य है, और दूसरा है जीवन मुक्ति, ये भी हमारा लक्ष्य है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये लक्ष्य है। अब इसको हम समझेंगे, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। और लोग तीसरा शब्द भी यूज करते हैं, मोक्ष, तो मोक्ष क्या है। परंतु दो शब्दों में सब कुछ आ जाएगा। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति धाम हम आत्माओं का घर है, उस घर से हम आत्माएं इस संसार में आए हैं, तो जहां से आए हैं वहीं वापस जाना है। अभी आप लोग बैंगलोर, मैसूर, गुलबर्गा, आंध्रा, जहां से भी आए, आप आए चार दिन यहाँ रहे, बहुत अच्छा लगा, फिर वापस जाना है जहां से आए, तो वापस तो जाना पड़ेगा ना जहां से आए हैं। तो आत्माएं कहां से आई है, कहेंगे परम धाम से आई है। तो जहां से आए हैं वहां वापस जाना है, तो लक्ष्य है हमारा वो ही कि घर जाना है। पर जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण चाहिए। अब यहां आप आए तो आपका लक्ष्य था राजयोग सीखना है, ये समझना है, तो वैसे लक्षण धारण किए, स्टूडेंट बन के रहे। घर में तो हो सकता है आप मालिक हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो कॉलेज में पढ़ाते होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई क्या होंगे, हर एक ऑक्यूपेशन अपना, लेकिन यहाँ सब स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट, हमारा टीचर शिव बाबा। इसलिए तो जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण होते हैं। अभी जैसे अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो लक्ष्य है ना, अभी अमरनाथ जाना है, तो अमरनाथ जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या नहीं, कितना परिश्रम, कितनी तकलीफ लेते हैं, ठंडी लगेगी, बीमारी होगी, कुछ होगा, दवाई लेंगे, कंबल लेंगे, खाना पीना लेंगे। तो लक्षण भी वैसे ही, अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, ऐसे नारे लगाते हुए जाते हैं। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो जब लक्ष्य है मुक्ति का तो उसके लक्षण क्या है, लक्षण माना क्वालिफिकेशंस, अर्थात जैसा वहां का स्थान है वैसे ही क्वालिटीज हमारे अंदर चाहिए। तो आत्मा के जो मूल क्वालिटीज हैं, इननेट क्वालिटीज जिसको कहते हैं, कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज क्या है, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस, ये सब उसके कोर वैल्यूज है। तो इसलिए आत्मा को ये वैल्यूज धारण करने हैं, क्योंकि यही आत्मा का सच्चा स्वरूप है। तो इसीलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो ये राजयोग शुद्धिकरण का मार्ग है, जिसके आधार से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और फिर परमात्मा से योग लगा करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। क्योंकि ये योग एक अग्नि है। जैसे अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं वो चीज बदल जाती है, अग्नि की ये विशेषता है, ट्रांसफॉर्मेशन। नथिंग इज द सेम आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द फायर। जैसे अग्नि में हम कोई नरम चीज डालते हैं, जैसे जैसे मिट्टी है, मिट्टी की ईंट बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं फ्रॉम मड, यू पुट इन अ फर्नेस, तो फर्नेस में डालने से क्या होता है, वो स्ट्रांग बन जाती है, एकदम मिट्टी जैसी है लेकिन कितना स्ट्रांग बन जाती है ईंट, जो मकान बना सकते हैं, है तो मिट्टी, लेकिन वो कमजोर चीज भी स्ट्रांग बन जाती है। दूसरी तरफ हम देखें आग में कई हार्ड चीजें डालते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, जैसे आलू, बैंगन, टमाटर, ना सब्जियां डालते हैं कोई कठोर दाल, तो जैसे डाला वो नरम हो जाएगा। टमाटर कितना नरम हो जाता है आग में डालते हैं, बैंगन कितना नरम हो जाता है, आलू भी नरम हो जाएगा, पटेटो सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड सॉफ्ट हो जाता है। तो ये योगाग्नि में जो मनुष्य के अंदर इतने कठोर संस्कार जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, दुनिया के अंदर कई प्रकार की पर्सनालिटीज मानी जाती है। एक कहते हैं कोकोनट पर्सनालिटी और दूसरी कहते हैं मैंगो पर्सनालिटी। कोकोनट पर्सनालिटी क्या होती है, बाहर से बहुत हार्ड और अंदर से बहुत सॉफ्ट। बाहर से दिखाएगा बहुत गुस्सा आएगा, बहुत लड़ता है और फिर देखो तो रोने लगता है, अंदर से सॉफ्ट माना वेरी फ्रेजाइल, बहुत कमजोर। तो जैसे कोकोनट अंदर से पानी है और बाहर से कितना हार्ड है, तो मनुष्य भी बाहर से बहुत हार्ड दिखाते लेकिन अंदर में रोते रहते हैं ना, दे आर क्राइंग ऑल द टाइम, दे आर टू फ्रेजाइल, नॉट स्ट्रांग इनसाइड। और दूसरा है मैंगो पर्सनालिटी। मैंगो पर्सनालिटी मींस बाहर से सॉफ्ट है पर अंदर से वेरी स्ट्रांग है ना, मैंगो का जो सीड है कितना स्ट्रांग है, तो बाहर से सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है लेकिन अंदर से बड़े स्ट्रांग है। तो चाहे किसी ने कुछ भी कह दिया, अनअफेक्टेड, क्योंकि इंटरनली वेरी स्ट्रांग। तो जब हम अपने आप को योग में तपाते हैं तो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं लेकिन व्यवहार में सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। ये नहीं गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये बाहर से बड़ा हार्ड पर अंदर में कमजोर, वेरी वेरी फ्रेजाइल। गुस्से वाला व्यक्ति रोता भी जल्दी है, ऐसे होता है ना, ये अभी अभी गुस्सा, अभी अभी देखो रोने लगता है। और दूसरा होगा चाहे कुछ भी होता रहे, आई एम वेरी स्टेबल, क्योंकि अंदर में बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए अग्नि के अंदर ये सब परिवर्तन आता है। तो योग एक अग्नि है जिसमें शुद्धिकरण भी, आप सोना डालिए आग में, उसमें कितना एलॉय है आग, सोने में, गोल्ड में, कॉपर, आयरन, सिल्वर, बहुत कुछ डालते हैं तभी उसके ये ज्वेलरी बनती है। लेकिन अगर वापस प्योर गोल्ड चाहिए तो क्या करते हैं, उसको फिर से आग में डालते हैं। तो जो दूसरे एलिमेंट्स है, मेटल्स है, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, तो वो बाकी जितने भी अन्य मेटल्स है वो सब मेल्ट होके अलग हो जाते हैं और गोल्ड साबित रह जाता है, इट बिकम इट्स एंड। और फिर वो जितना ही प्योर उतना ही सॉफ्ट, उसको फ्लेक्सिबल, उसको आप उसको शेप दे सकते हैं, जो शेप देना चाहे वे दे सकते हैं। जैसे उसमें बहुत कुछ और मेटल्स डाले वो हार्ड हो जाता है। तो आत्मा भी प्योर गोल्ड है। तो मैं वो शुद्ध आत्मा हूं, ये शुद्धिकरण की अनुभूति हम योग से कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर मैं शुद्ध नहीं हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं जीवन में। तो हमने कहा, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, पाप किए हैं, और अगर शुद्ध होना है तो कैसे होंगे? शुद्धिकरण चाहते तो है ना, तो कैसे होंगे शुद्ध? अगर मैं यही कहूंगी मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, तो शुद्ध होंगे? होंगे? I'm very dirty, यही कहेंगे तो क्लीन होंगे क्या? क्लीन होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा ना, यू हैव टू वॉश योरसेल्फ। केवल डर्टी डर्टी कहने से थोड़ी क्लीन होता है, बाय सेइंग इट वोंट बिकम क्लीन, बट यू हैव टू बिकम इट। तो कैसे होंगे क्लीन? जैसे वो साबुन लगाते हैं, पानी डालते हैं तो क्लीन होते हैं। तो ये भी लक्ष्य सोप, हम कहते हैं ये लक्ष्य सोप है, जैसे वो लक्ष सोप होता है ना, ये लक्ष्य सोप है। ये लक्ष्य है मेरा कि मैं आत्मा तो कितनी स्वच्छ हूं, कितनी पवित्र हूं, तो मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। ये चिंतन से शुद्धिकरण आएगा। कई कहते हैं कि एक प्रश्न था परसों जो दिया, जिसमें प्रश्न था कि आप लोग जो मेडिटेशन कमेंट्री कराते हो तो उसमें तो ऐसे लगता है जैसे आप हिप्नोटाइज कर रहे हो, क्योंकि हिप्नोटाइज जब करते हैं ना तो वैसा ही करते हैं। हमने देखा एक जगह जहां हिप्नोटाइज कर रहे थे तो सब लोगों को कहा खड़े हो जाओ, तो सब खड़े हो गए। खड़े हो गए तो उनको बोला अभी आप ये समझो मैं एक झाड़ू हूं। झाड़ू समझते हैं, ब्रूम स्टिक, ब्रूम स्टिक होते ना, तो जैसे ब्रूम स्टिक है तो ब्रूम स्टिक की तरह चलो, तो ब्रूम स्टिक की तरह चलने लगे, ऐसे हिलने लग गए, सब हिलने लग गए। फिर चलते रहे तो सचमुच उनको लगा हम तो ब्रूम स्टिक है, हिप्नोटाइज हो गए। कोई किसको कुछ खिला देता है, सुंगा देता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर सोचता अरे ये क्या किया मैंने, जब हिप्नोटिज्म से मिस और दूर होते। अब वो एक स्थूल चीज है, हिप्नोटिज्म एक स्थूल चीज है, ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस है क्योंकि हाउ विल यू बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ? वास्तव में हिप्नोटाइज हम हो गए। विवेकानंद की बात आती है, एक बार विवेकानंद की पुस्तक हम पढ़ रहे थे जिसमें उसमें लिखा था विवेकानंद ने एक बार इतना जोरदार भाषण किया और सबके अंदर इतनी शक्ति भर दी और तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें बहुत करता था विवेकानंद, और उसके अंदर क्या शक्ति थी, चेहरे पर कितना तेज था। तो उनको देखते ही जैसे शक्ति का अनुभव होता था लोगों को। तो एक बार किसी ने उसको कह दिया कि विवेकानंद एक बात मुझे आता है मैं बताऊं, का बताओ? तो हमें तो लगता है विवेकानंद स्वामी जी यू आर हिप्नोटाइजिंग अस, विवेकानंद को कहा, दिस इज व्हाट वी फील, यू आर हिप्नोटाइजिंग अस बाय स्पीकिंग लाइक दैट। तो स्वामी जी ने कहा नो, आई एम नॉट हिप्नोटाइजिंग यू, आई एम डी हिप्नोटाइजिंग यू, समझा? आई एम डी हिप्नोटाइजिंग यू, यू हैव ऑलरेडी बीन हिप्नोटाइज्ड। आप लोग सब हिप्नोटाइज हो गए हो, अब आपका वो जो हिप्नोटाइज है ना, जो आप सम्मोहित रूप हो, वो सब आप दूर कर रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य हिप्नोटाइज होता है उसको पता ही नहीं पड़ता मैं क्या हूं, कहां हूं। फिर जब वापस आया, अरे मैं क्या था, क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने। अब वास्तव में हम हिप्नोटाइज हो गए थे, कैसे? हम है आत्मा, और क्या समझ बैठे हैं, क्या समझ बैठे हैं, शरीर। तो हिप्नोटाइज हो गए थे, सारा दिन देह का ही नाम, देह का ही रूप, देह को ही देखना, ये देह ही सब कुछ है, और यही समझ लिया कि मैं यही हूं। अब शिव बाबा कहते हैं अब निकालो ये हिप्नोटिज्म, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तो ये डी हिप्नोटाइज कर रहे, हिप्नोटाइज नहीं कर रहे, मेकिंग यू कम बैक इनटू योर ओरिजिनल फॉर्म। जैसे हमने आपको उस दिन मिसाल सुनाया था, या पता नहीं सुनाया था या नहीं, कि वो दिखाते ना एक शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में आ गया, बताया था ना, तो उसको यही लगा मैं तो बकरी हूं। तब उसको शेर ने कहा, अरे तुम क्यों डरते हो, मैं तो तेरा बाप हूं, तुम तो शेर हो। वो कहे नहीं मैं तो बकरी हूं। तो अपना संग दिया, उसको रियलाइज कराया कि तुम शेर कैसे हो, बकरी थोड़ी ऐसे करेगी, तुम बकरियों के संग में कैसे आ गए, पहचानो अपने असली स्वरूप को। तो इसी प्रकार हम हिप्नोटाइज हो गए थे। किसने हिप्नोटाइज किया, हम कहते ये माया, माया माना ये विकार, माया अज्ञान, इल्यूजन है, इट्स नॉट रियलिटी। ये शरीर तो विनाशी है पर मैं तो अविनाशी हूं। ये जैसे संकल्प करेंगे यू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। आज मनुष्य को डेथ, मृत्यु का कितना भय है, सो फ्राइटेन, हाय मर जाऊंगा। किसी को कहेंगे भी अब तो बस कैंसर इज इन योर फोर्थ स्टेज, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, समझो डॉक्टर जवाब दे देता है 3 महीने से ज्यादा नहीं। तो कई तो इतनी चिंता हो जाती, इतनी चिंता हो जाती, तो 3 महीना तो क्या, 3 हफ्ता भी नहीं जीते, दे डाई। एंड सम पीपल इफ डॉक्टर सेज 3 मंथ्स बट दे कैन गो ऑन फॉर 3 इयर्स बिकॉज दे नॉट अफ्रेड। कई बार पता भी नहीं पड़ता ना कि कैंसर है, तो पता भी नहीं पड़ता है, दे डोंट इवन नो, और फियर ही नहीं है तो दे लिव वेरी लॉन्ग। बट बिकॉज द फियर कम्स तो फियर मेक्स देम डाई अर्लियर, इट्स नॉट, इजंट इट लाइक दैट। तो हम देखते भय इंसान को मृत्यु का कितना लगता है। वाई आर वी अफ्रेड ऑफ डेथ, इज देयर नीड टू बी फ्राइटेंड ऑफ डेथ, इज डेथ समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू कम, इट विल कम ना वन डे। कि यू थिंक यू कैन बिकम इमॉर्टल इन दिस बॉडी, दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी टूडे, पीपल थिंक दैट दे कैन बिकम इमॉर्टल। तभी तो इतना सब करते रहते, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसलिए मृत्यु इज, कहते ना, एज क्या इनएविटेबल एज डेथ, सम एज सर्टेन एज डेथ, कभी हो ही नहीं सकता कि मृत्यु हो ही नहीं। लेकिन मैं कौन हूं, शरीर की मृत्यु है ना, मेरी थोड़ी है, मैं तो एक आत्मा हूं। इसीलिए प्रार्थना में क्या कहते हैं, असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। अमृतम गमय का अर्थ ये नहीं है कि शरीर में अमर हो जाऊं, अमृतत्व का ज्ञान दो, कैसे मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। तो ये ज्ञान खुद को जब हम देते हैं, ये समझ मिलती है, ये जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस से हम दूर जाते हैं, ये वी आर नॉट हिप्नोटाइजिंग बट वी आर डी हिप्नोटाइजिंग। तो वो अवेयरनेस कैसे आएगी कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, थ्रू चिंतन। तो ये राजयोग में आत्मचिंतन ये पहली स्टेज है। फिर परमात्म चिंतन, मैं किसकी संतान हूं, केवल मैं ही आत्मा ही केवल नहीं हूं पर मैं उस परमात्मा की संतान हूं। मनुष्य को अभिमान आता है जब किसी का पिता बहुत बड़ा आदमी होता है ना, कितना अभिमान आता है। एक मिनिस्टर का बच्चा होगा, वो कहेगा मेरा बाप मिनिस्टर है, क्या नशा होता है, मैं जो चाहूं सो करूं, मिनिस्टर का बच्चा हूं मैं, एक राजा का बच्चा हूं, जो चाहूं सो करूं। हम नेपाल की बात पढ़ रहे थे तो वो बताते हैं कि अगर मान लो राजा ने, राजा के बच्चे ने कुछ भी किया, लेकिन लास्ट जो डिक्टेट्स है या निर्णय है वो तो राजा ही लेगा ना। तो राजा का बच्चा जो चाहे सो करे, क्योंकि राजा तो उसका बाप है ना, तो इसीलिए बाप उसको, लास्ट डिसीशन तो राजा का होता है। ऐसे इसीलिए वो समझते भाई तो निर्भय है, लेकिन कुछ भी हो, यानी नशा है, मैं राजा का बच्चा हूं, अब यहाँ पर क्या है, किसके बच्चे, किसके बच्चे, भगवान के बच्चे। कितना बड़ा इंटॉक्सिकेशन है, वो राजा का बच्चा हो, ये नशा कौन सी बड़ी बात है, तो सब विनाशी है। इसीलिए ये इंटॉक्सिकेशन बहुत ऊंचा है। तो अगर मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं तो मैं भी कितना ऊंचा हूं। ये है रियल अवेयरनेस, वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूं। तो हिप्नोटाइज नहीं है, पर ये डी हिप्नोटाइज है। बाहर का जो ईगो है ये कोकोनट पर्सनालिटी है। अंदर तो बड़े कमजोर है, खोखले है, खाली है, लेकिन एक मैंगो पर्सनालिटी चाहिए। बाहर से बड़े फ्लेक्सिबल, अंदर से स्ट्रांग, मैं कौन। तो इसीलिए ये राजयोग अंदर से स्ट्रांग बनाता है, ये आत्म चिंतन करके स्ट्रांग बनाता है, परमात्म चिंतन करके स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि इट्स ऑल इन योर थॉट्स, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो एक लक्ष्य है हमारा मुक्ति, क्योंकि अब आत्मा को वापस जाना है, तो यही तरीका है शुद्धिकरण का। और दूसरा लक्ष्य है जीवन मुक्ति, जीवन में रहते भी मुक्ति। तो कई कहते बस मुक्ति में चले गए, फिर वापस क्यों आए इस संसार में, क्योंकि वो समझते मोक्ष मिल गया, बस मोक्ष मिल गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, बस खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। ये आत्मा परमात्मा और प्रकृति तीनों ही इटर्नल है। नोबडी क्रिएटेड ऑल दिस थ्री। अगर किसी ने क्रिएट किया और कभी उनका क्रिएशन हुआ और फिर उसका डिस्ट्रक्शन है, इट मींस इट इज द इन एंड फिनिश। फिर तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, इट बिगिंस एंड फिनिशेस एंड दैट्स द एंड। इट्स इटर्नल। आत्मा भी इटर्नल है, परमात्मा भी इटर्नल है, और ये प्रकृति भी इटर्नल है। इसलिए साइकिल है, साइकिल प्रूव्स इटर्निटी। नहीं तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो, यहां बिगनिंग यहां एंड, बट साइकिल प्रूव्स इटर्निटी। देयर इज अ चेंज, जो कल सवेरे आपको बताया होगा उषा बहन ने। तो इसीलिए घर भी जाना है, फिर उस सत्युगी पावन दुनिया में भी आना है। मनुष्य को देवता बनना है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जीवन में है और फिर भी मुक्ति है। ये और भी ऊंची स्थिति है, क्योंकि आत्मा जब परम धाम में है, मुक्ति धाम में, इट इज लाइक अ डेड स्टेज, जस्ट लाइक अ सीड इन वैक्यूम। जैसे सीड को अगर वैक्यूम में रखते हैं, तो चाहे हजारों सालों तक सीड वैक्यूम में रहेगी, नो डिफरेंस, नो चेंज, नो यूज ऑल्सो। बीज का महत्व कब है? वेन यू पुट इट इन द सॉइल, वेन यू वॉटर इट, देन द सीड जर्मिनेट्स, दैट डॉर्मेंट एनर्जी एक्टिवेट्स। तो आत्मा के अंदर जो एनर्जी है वो एक्टिवेट भी चाहिए, नहीं तो आत्मा की वैल्यू क्या है। इसलिए शरीर भी चाहिए, ये प्रकृति भी चाहिए। तो परम धाम में आत्मा मुक्ति की स्टेज माना एक डीप स्लीप स्टेज। जैसे एक डीप स्लीप स्टेज होती है, उस समय कुछ पता नहीं है। डीप स्लीप भी चाहिए, जरूर हर एक को चाहिए, तभी तो बॉडी फिर से फ्रेश हो जाए, एक्टिव हो जाए। जिसको डीप स्लीप नहीं आती है, ही इज नेवर नेवर सेटिस्फाइड, लगेगा पता नहीं क्या, बेचैनी होती है। इसलिए डीप स्लीप भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए, ब्रेन के लिए। तो आत्मा की जो डीप स्लीप स्टेज है, वो परम धाम में मुक्ति की स्टेज है। वहां आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं है। कई समझते हैं आत्मा को मुक्ति मिल गई, मोक्ष हो गया, वह आनंद ही आनंद है। शिव बाबा कहते हैं परम धाम में आनंद की कोई स्टेज नहीं। आनंद तब है जब आत्मा एक्शन में है। क्योंकि वो डीप स्लीप की जो स्टेज है इट्स लाइक अ डेड स्टेज. जब तक आत्मा शरीर में नहीं आई तब तक कुछ अनुभूति नहीं है, क्योंकि डीप स्लीप स्टेज का भी जो अनुभव है वो भी आप कब वर्णन करेंगे. हाउ विल यू फील दैट यू हैड अ डीप स्लीप, यू हैड डीप स्लीप, व्हेन विल यू एक्सपीरियंस इट? यस, यू एक्सपीरियंस द डीप स्लीप स्टेज ओनली व्हेन यू वेक अप. आप कहेंगे ओ आई हैड सच गुड स्लीप, आई स्लेप्ट सो वेल. लेकिन जब आप डीप स्लीप स्टेज में उस समय कहेंगे कि आई एम हैविंग वेरी डीप स्लीप, यू कांट स्पीक एट दैट टाइम. तो आत्मा परम धाम में उसको अनुभव जो होता है वो वहां कुछ नहीं है, जब यहां आएंगे तब उसको आता है. आत्मा परम धाम में मुक्ति में है, इसलिए मुक्ति की कामना करती है आत्मा, क्योंकि वो भी अनुभव आत्मा को तब है जब जागृत अवस्था में आए. इसीलिए वो भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ उनसे ऊंची स्थिति है जीवन मुक्ति. जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव. अब इसका दूसरा एक बहुत गहरा राज है, क्यों हम मोक्ष चाहते हैं, क्यों हम समझते हैं वापस आना ही नहीं है. पहली बात तो मोक्ष मिलता ही नहीं है, आपको परसों बताया था रात को, एक जन्म भी लेना ही है, आना है जरूर लास्ट में. अभी भी कलयुग अंत में आत्माएं परम धाम से आ रही है, पूरा टाइम परम धाम में है, लेकिन अभी भी आना है. तो वन बर्थ लिया फिर वापस, पर कोई जो आत्मा शुरू से आई वो अंत तक रहेगी, बीच से आई अंत तक रहेगी, लास्ट में भी आएगी. यू नो लाइक इन अ फिल्म यू हैव द हीरो हुज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर विलियन वो बीच से आता है. यू नो विलियन डजंट कम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ही कम्स हाफ वे. फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रास हैं, जब क्लाइमेक्स सीन आती है कितने एक्टर्स हो जाते हैं स्टेज पर, लेकिन वो इज वेरी वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन द एंड. सो एक्स्ट्रास विच कम दे आर ओनली इन अ फ्यू सीन्स एंड दैट्स ऑल एंड द ड्रामा फिनिशेस, बट एट द एंड ऑल द एक्टर्स कम ऑन द स्टेज. यू हैव सीन इन ड्रामास नो. तो स्टेज पर आने का समय हर एक का अपना अपना, पर जाने का समय सबका एक साथ. यू गो इन अ थिएटर टू वॉच अ मूवी, एंट्री गेट्स आर ओपन ऑल द टाइम पर एग्जिट गेट्स आर क्लोज, ऑपोजिट रहते हैं. एंड व्हेन द फिल्म फिनिशेस एंट्री गेट्स क्लोज एंड एग्जिट गेट्स ओपन. तो ये भी परम धाम के एग्जिट गेट्स एक ही टाइम खोलते, इस सृष्टि के एग्जिट गेट्स परम धाम के लिए वो एक ही टाइम खोलते हैं. इसलिए सृष्टि से सृष्टि पर आने का टाइम सतयुग से लेकर कलयुग अंत, इसलिए पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है. परंतु आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती और अंत में अपने आप भी नहीं जा सकती है, परमात्मा को आना पड़ता है वापस ले जाने के लिए. एक लखनऊ में एक बिल्डिंग है, लखनऊ है ना यूपी, यूपी में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है बारादरी भूल भुलैया, उसका नाम ही है भूल भुलैया. भूल भुलैया वाली बिल्डिंग, उसके अंदर क्या विशेषता है, एक बार आप उसमें एंटर कर गए ना, यू कांट कम आउट ऑन योर ओन. इट्स सो ह्यूज, सो वास्ट, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, फिर वो गलियां हैं, पता नहीं क्या क्या. आप अगर जाएंगे भाई मैं अभी नीचे जाऊं और फिर वापस निकलूं, यू कांट कम आउट, एक दीवार आ जाएगी, रास्ता ही नहीं मिलेगा. इट्स सो कंफ्यूजिंग. जब तक गाइड ना आए, गाइड ओनली नोज द वे, वी कांट, दोज हु गो फर्स्ट टाइम. देखा है किसी ने, आपने देखा है लखनऊ गए हैं, अच्छा, तो गाइड आता है. तो मैंने वो जो गाइड थी वो हमारी सेंटर की बहन थी, तो मैंने उसको कहा कि गाइड को भी कैसे रास्ता मालूम पड़ता है, व्हाट इज द युक्ति. तो उसने हमको युक्ति बताई कि कैसे बाहर निकलते हैं, कि जो जो सीढ़ियां नीचे जाने की ना उसमें नहीं जाने का, केवल जो ऊपर जाती है सीढ़ियां उसी में चढ़ने का, चाहे कैसे कहां भी सीढ़ी हो, द लैडर विच इज गोइंग ओनली अपवर्ड्स, यू गो यू नो क्लाइम दैट लैडर, डोंट क्लाइम द लैडर विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, तो बोला जैसे ऊपर जाते जाएंगे यू विल कम टू द टॉप एंड फ्रॉम देयर देयर इज अ बिग स्टेयरकेस व्हिच टेक्स यू टू द मेन गेट। और ऐसे ही दिस ये युक्ति है, नीचे मत जाओ ऊपर की ओर जाओ, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अब संसार चक्र में भी ऐसे ही है, देह अभिमान में आएंगे फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो वापस परम धाम जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाओ, एलिवेट योर सेल्फ। हाउ विल यू एलिवेट योर सेल्फ, थ्रू सोल कॉन्शियसनेस, गो बैक टू योर ओरिजिनल नेचर। तो आत्मा देह अभिमान से मुक्त होगी, पापों से मुक्त होगी, लेकिन फिर जितना हम परमात्मा की याद में हर कर्म करेंगे वो कर्म सत्कर्म बन जाएगा। तो सत्कर्म की पूंजी साथ में ले जाएंगे तो उनका फल कहाँ पाएंगे, वो तो यहाँ नहीं, फिर वो सतयुग में आएंगे। इसको कहते हैं जीवन में रहते मुक्ति, क्योंकि कलयुगी दुनिया में जो पापों का जो हम फल पा रहे हैं ना, तन का रोग, मन धन जन का जो दुख मिल रहा है, ये सतयुगी दुनिया में नहीं है। तो कई लोग समझते हैं कि ये दुनिया सदा ही दुख रूप है, इसलिए नहीं आना वापस इस दुनिया में। शिव बाबा कहते नहीं, ये मेरी रचना है, भगवान की रचना है ना ये संसार, तो ये दुख रूप नहीं है, ये सुख रूप है, लेकिन इसको हमने दुख रूप हमने बनाया, तो सुख रूप भी कौन बनाएगा, हम ही बनाएंगे। इसीलिए सुख रूप बनाने के लिए पहले खुद सुख रूप बनो, खुद समझो मैं कौन हूं, सुखरूप हूं, फिर उस सुख के सागर से संबंध जोड़ो और सुखदायी कर्म करो, तो वो सत्कर्म की पूंजी आत्मा ले जाएगी तो सुखधाम में आएगी। इसको कहते जीवन मुक्ति, जहां जीवन में है तो भी मुक्ति की अनुभूति है सतयुगी दुनिया में, क्योंकि मनुष्य बंधन कलयुग में किसको समझता है, जन्म मरण बंधन समझता है क्योंकि दुख है कलयुग में, लेकिन सतयुग में जन्म मरण दुखदायी नहीं है। जन्म और मरण केवल वस्त्र बदलना है, अब वस्त्र मुझे नया पहनने को मिलेगा तो दुख थोड़ी होता है, होता है क्या दुख, आपके आगे नए वस्त्र पड़े और ये मैले हो गए तो आर यू सैड अनहैप्पी टू चेंज, खुशी होगी ना, वाह कितना अच्छा है, फटाफट निकालेंगे और नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन दुख कब होता है वस्त्र उतारने में, है हाँ जब पुराने कपड़े से मोह होता है तब दुख होता है। कई बार होता है ना, मुझे कोई कोट बहुत अच्छा लगता है, हम कोई कितना भी दूसरा अच्छा कोट देंगे कि नहीं नहीं आई लाइक दिस कोट, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, आई लाइक इट, तो बहुत पसंद है इसीलिए छोड़ते नहीं है। या तो दूसरा कारण क्यों होता है, क्यों कपड़े बदलना दुख लगता है, जब कपड़े बहुत टाइट होते, इतना टाइट कपड़े पहनते हैं आजकल कलयुगी दुनिया में, इतना टाइट, तो टाइट कपड़े उतरेंगे कैसे, तकलीफ होती है ना, इतना टाइट ट्राउजर्स पहनते हैं ना, इतना टाइट एकदम बॉडी साइज ट्राउजर्स, सब कुछ बॉडी साइज, फिर निकालने में तकलीफ होती है। कलयुगी दुनिया में तो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, सब फैशन के नाम पर, कपड़ा फैशन के लिए थोड़ी है, शरीर को ढकने के लिए, पर फैशन के नाम पर कपड़े भी कैसे, कपड़ा क्या, हमने तो यूरोप में अमेरिका में जाके देखा कॉटन नहीं पहनते हैं, लेदर पहनते हैं, ये तो लेदर जिससे शूज बनते हैं जूते बनते हैं, वो चमड़ी का कपड़ा, लेदर क्लोथ्स, और वो भी काले क्लोथ्स, लेदर और काला, यू कैन इमेजिन क्या उनकी बुद्धि बन जाती होगी, और इतना टाइट अटैच टू द बॉडी, अब वो निकलेगा कैसे, कितनी तकलीफ होती होगी, पता नहीं 4 दिन वही पहनते होंगे गंदे गंदे कपड़े, ऐसे होता होगा, क्या पता निकालते भी होंगे या नहीं। कई लोग जो बाल बनाते हैं ना, फैशन करते हैं, तो वो ब्यूटी पार्लर में जाके बाल बनाते हैं, अब वो कितने दिन वही बाल रखते होंगे, कभी धोते भी नहीं होंगे, इतने गंदे होते होंगे। सोचो स्वच्छता कहाँ है, ब्यूटी के नाम पर, फैशन के नाम पर, और जरा सा कुछ लगा तो कितना दर्द, वो दुख होता, अरे मेरा बाल बिगड़ गया है ना, रोते रहेंगे। तो इसीलिए ये देह का अभिमान मनुष्य को कितना गिरा चुका है, तो मृत्यु का डर लगता है। परंतु अगर कपड़े ढीले हैं तो उतारना सहज है, नए कपड़े तो कितने अच्छे हैं, यू शुड बी हैप्पी। तो सतयुग में क्यों मृत्यु का डर नहीं है, न जन्म का दुख न मृत्यु का दुख, क्योंकि वहां तो जैसे कपड़े बदलना है, और उसमें भी जैसे जैसे आप देखते हैं ना, सांप होता है, देखा है आपने सांप, वो अपनी चमड़ी बदलता है, यू नो आई डोंट नो व्हाट यू से इन कन्नड़ा, गुजराती में काचली बोलते हैं, चमड़ी बदलता है, मोल्टिंग ऑफ स्किन, तो अंदर में उसको नई चमड़ी आ जाती है, और बाहर की चमड़ी बढ़ती नहीं है, अंदर की अंदर वो बढ़ता है, तो बाहर की चमड़ी अपने आप निकल जाती है, वो पूरे का पूरा स्नेक की चमड़ी बाहर पड़ी होगी, स्नेक होता है ना, हाँ एकदम लगेगा कि ये तो स्नेक है, लेकिन वो केवल चमड़ी होती है, स्नेक तो चला गया, बट यू वोंट कॉल दैट डेथ ना, उसको मृत्यु थोड़ी कहेंगे, केवल चमड़ी बदलना। तो आत्मा भी वहां चमड़ी बदलती है, और वो भी दीर्घ काल, सतयुग में 150 साल, 150 ईयर्स की जब एज होती है, तो बॉडी जवाब तो देगा ना, एक्चुअली है तो प्रकृति, और आत्मा को साक्षात्कार होता है कि अब मैं ये चोला छोड़ना है, एक बच्चा छोटा शिशु बालक बनना है, तो स्व इच्छा से आत्मा देह छोड़ती है। ये योग की सिद्धि है, योग की सिद्धि इस संसार में भी अभी भी हम लोग देखते हैं, कई ऐसे योगी पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, बड़े बहुत शुद्ध पवित्र हैं, उनको पहले से आभास होता है कि अब मुझे ये शरीर छोड़ना है, तो वो बताते हैं कि मैं फलाने तारीख को, फलाने दिन, फलाने समय पर ऐसे देह त्यागूंगा, और वो लेट जाते हैं, और सबसे जैसे विदाई लेते 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 आत्मा विदाई ले लेती है, सबसे छुट्टी, हिसाब किताब सब चुकत हुए, तो जैसे मक्खन से बाल, मक्खन होता है ना, मक्खन बटर, बटर में अगर बाल पड़ जाए तो कैसे निकलता है, सो इजी, और कोई कठोर चीज में बाल पड़ जाए, इडली में भी पड़े तो थोड़ा टाइम लगता है, मक्खन से निकालो तो इतना सहज, और रोटी से निकालो बाल, कभी कभी रोटी में बाल पड़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, धीरे धीरे। तो सहज कैसे निकलेगा, जब आत्मा देह अभिमान से न्यारी है। तो इसीलिए परमात्मा हमें यही कहते कि बच्चे तुम तो एक आत्मा हो, तुम एक ज्योति हो, प्रकाश का पुंज हो। किसी इन्होंने प्रश्न किया है कि आप कहते हो कि गॉड इज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड ही हैज नो शेप नो फॉर्म नो बॉडी, एट द सेम टाइम यू से दैट गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन फॉर्म, God has made man in his own image means जो qualities है भगवान में, he must listen, कि जो भगवान के qualities हैं, वो qualities मनुष्य में भरे, that is why it's called God made man in his own image means the qualities of God, not physical form of God, physical form की तो बात ही नहीं है। God is ocean of peace, ocean of love, ocean of happiness. So man also is filled with these qualities. This is what it means when we say God made man in his own image. Who gave this question? This is what it means. Own image or own form means the qualities of God, not physically. और फिजिकली भी अगर कहेंगे तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट. बट ह्यूमन फॉर्म मीन्स इन ह्यूमन बींग्स ऑल. जीवन मुक्ति मीन्स, व्हाट डज जीवन मुक्ति मीन्स? जीवन है लेकिन मुक्ति, किससे मुक्ति? किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति, रोग से मुक्ति, बंधन से मुक्ति. जन्म मरण कोई दुखदायी नहीं है, और वो भी अपनी इच्छा से. देह त्याग आज दुखदायी क्यों लगता है? मृत्यु, क्योंकि छह बातें हैं. देयर आर सिक्स रीजंस फॉर विच देयर इज फियर ऑफ डेथ. पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ. डेथ इज सर्टेन, इज इनेविटेबल. बट वाई आर वी अफ्रेड? पहला है शरीर का अभिमान, मो, बॉडी कॉन्शियसनेस. और राजयोग से हम इतना सहज हो जाते, मैं एक आत्मा हूं, तो देह से न्यारी. दिस मेक्स अस फ्री फ्रॉम द पुल ऑफ द बॉडी. दूसरा कारण है, सेकेंड रीजन, अटैचमेंट टू बिलोंगिंग्स. ये मेरा मेरा मेरा. अब राजयोग में हम कहते हैं, शरीर, इस संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं, नथिंग इज माइन. हम कहते, कोई कहते हैं, मैं कभी चोरी नहीं करता, किसी की कोई चीज उठाई नहीं. चोरी करना पाप है, तो चोरी करना पाप है, किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए हमें. लेकिन जैसे किसी की चीज उठाना पाप है, वैसे इस संसार की जो चीजें हैं उसमें मोह रखना भी चोरी है. यू नो क्यों चोरी है? इस संसार की कोई भी वस्तु में मोह रखना, ये चोरी नहीं है क्या? हा? कोई कहेगा, पर ये मेरी है ना, तो कैसे नहीं मोह होगा? किसने कहा आपकी है? आप लेके आए थे क्या परमधाम से? हाँ, तो आपकी कहां से हुई? लेके जाएंगे क्या परमधाम, तो आपकी कैसे हुई? तो कैसे कहेंगे मेरी है? पर कहते, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत से इसको पाया है, मैंने खुद अपना मकान बनाया, तो मेरा मकान है ना. कैसे नहीं मैं कहूंगा मेरा है? अच्छा, मकान को ले जाएगी क्या आत्मा परमधाम में? एक वो मिसाल आता है, एक रियल घटना. एक औरत थी, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो कभी किसी को देती नहीं थी. रियल घटना है. एक बड़ी पेटी थी, उसमें इसका बहुत सोना, जेवर, तिजोरी जैसी थी, लेकिन कभी किसी को चाबी नहीं देती थी, कभी नहीं. अब कोई उठा भी नहीं सकता था, बहुत हैवी था. तो बिल्कुल मरने की घड़ी आई, मरने की घड़ी आई उसकी, तो उसके बच्चों ने कहा कि माता जी, वो चाबी कहाँ है? तो चाबी दे ही नहीं, दे ही नहीं, दे ही नहीं. आखिर मर गई. अब मर गई तो बच्चों ने सोचा, अभी चाबी कहाँ रखी होगी? तो जब उनका बॉडी का परीक्षण किया, वो तो मर गई, तो उसकी नाड़े में ना, वो पेटीकोट का नाड़ा होता है ना, उसके अंदर चाबी डाली हुई थी. अब सोचो, अब चाबी लेके गई क्या? लेके गई चाबी. इतना अटैचमेंट था, वो कभी वो नाड़ा कभी भी नहीं, उसके साथ ही रहता था. किसी को बाथरूम में भी वही लेके जाती थी, लोगों को था ये जरूर वही रखा होगा. और वो उसकी बच्चों को, माँ बच्चियों को तो पता चल गया होगा. तो मर गई तो ले थोड़ी गई. से रियल घटना है, ये सच्ची बात है. तो हम कहते हैं कि मेरा है क्या? कुछ भी नहीं है. इसलिए ये मेरा मेरा को खत्म करो, और समझो मेरा कौन? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई. हम तो कभी कभी एक अभ्यास करते हैं, समझो मैं आत्मा, इस समय शरीर छोड़ती हूं, मुझे कौन याद आएगा? ये एक अपनी परीक्षा लो, इस समय मुझे कोई याद आएगा? अगर कोई याद आएगा तो उसके साथ मेरा हिसाब किताब. तो न वस्तु याद आए, इसलिए वस्तु का अटैचमेंट डराता है. फिर व्यक्ति का अटैचमेंट, व्यक्ति का अटैचमेंट उनसे भी ज्यादा होता है. वस्तु तो फिर भी सहज है, मोह छोड़ना ठीक है, टूट गया कोई बात नहीं, दूसरा आएगा. लेकिन व्यक्ति, ह्यूमन बींग से इतना अटैचमेंट हो जाता है
जो उस अटैचमेंट के कारण मनुष्य मरता ही नहीं है। हमने ऐसे भी देखे, दिस इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, सो अटैच्ड टू ईच अदर। और ऐसी स्थिति हो गई जो हस्बैंड को कैंसर हो गया, रियल इंसिडेंट, कैंसर था, ही हैड ब्लड कैंसर। अब वो ब्लड कैंसर इतना फैल गया, अब वो हॉस्पिटल में था, तो जब वाइफ को पता चल गया, शी गॉट अ हार्ट अटैक। अब वो हार्ट अटैक इतना सीवियर पर बच गई, वो हॉस्पिटल में थी, शी वॉज इन अ डिफरेंट हॉस्पिटल, ही इन अ डिफरेंट हॉस्पिटल। अब दोनों बिल्कुल बेड रिडन, दे कुडंट स्पीक, दे वर सो वीक, सो वीक, इतने वीक होते गए, इतने वीक होते गए, लेकिन दे वर नॉट डाइंग। इतना कष्ट भोग रहे हैं, इतनी तकलीफ, और मर नहीं रहे थे। अब क्या कारण था? तो डॉक्टर मार तो सकते नहीं, इंजेक्शन दे और मार दे, ये भी तो नहीं होगा, नहीं तो ये तो क्राइम हो जाए। तो आखिर किसी ने उनको कहा कि इन दोनों को मिलाओ, लेट देम मीट, बिकॉज दे वर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, दे वॉन्ट टू मीट ईच अदर, बट दे कुडंट स्पीक, इंटरनली देयर माइंड वॉज लिंक्ड, दे वर सो अटैच्ड। और वंडर ये हुआ कि किसी भी तरीके से वो दोनों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स मिले और इन दोनों को नजदीक में लाए, पत्नी को पति के हॉस्पिटल में लाया होगा या कुछ। तो आखिर क्या हुआ, जैसे आमने सामने आए, एक दो को देखा, देख तो सकते थे, और देखा और सिर हिलाया, और उसी वक्त हस्बैंड की डेथ हुई और दो मिनट के बाद वाइफ की डेथ, दो मिनट के बाद। वाई दे वर नॉट डाइंग? बिकॉज टू मच अटैचमेंट, टू मच अटैचमेंट, एंड दे वर भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। अब ये भी देखो कितना दुखदाई है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, ये उनको भी आत्मा रूप में देखो, हैव गुड विशेस, सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि सवेरे सवेरे अमृत वेला, किसी ने कहा ना अमृत वेले का यह महत्व है, तो हम लोग कहते हैं सवेरे सवेरे उठो ना तो पांच केले खाओ, पांच केले, केला यू अंडरस्टैंड, बनाना, हेणु या क्या बोलते हैं बनाना को, क्या बोलते कन्नड़ा में, हाँ हाँ वो बाड़े, बाड़े। अच्छा तो क्या हुआ, तो वो पांच केले रोज सुबह उठो और खाओ, पांच केले, यू विल बी वेरी हेल्दी। पांच केले खाएंगे तो बहुत हेल्दी बनेंगे। खा सकते हैं, खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं, कौन नहीं खा सकता है। अब केले छोटे होते ना, वो साउथ एलची केले, केरला में जाओ तो बड़े बड़े केले मिलते हैं। लेकिन केले का मतलब क्या है, हम कहते हैं पांच केला रोज सुबह उठ के खाओ। पहला केला है अकेले आए हैं, समझा, केला, केला माना अकेला, अकेला हिंदी, अकेला मींस अलोन, अकेले आए हैं, ये एक केला, अकेले जाना है, ये दूसरा केला। अकेले में, अकेले में मींस एकांत में, इन अ वेरी, इन अ प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेले में, अकेला होकर, मन से भी अकेला, नो रिमेम्बरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अकेला होकर मैं आत्मा, और अकेले को याद करना। किसको? अकेला हियर मीन्स वन, तो इंग्लिश वी से आई हैव कम अलोन, आई हैव टू गो अलोन, इन अ लोन प्लेस, प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, बिकम अलोन, मेंटली ऑल्सो अलोन, एंड रिमेंबर द लोन फादर, एक बाप को याद करो। ये पांच केला रोज खा सकते हो, हाँ? अब ये रोज खाओ, तो दुनिया के किसी भी डर से आप मुक्त हो जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे। भय के कारण ये भी है, इच्छाएं, आसक्ति, मोह, लोभ, ये सब भय पैदा करता है, डर पैदा करता है। तो छह बातें बताई। पहला डर है मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो मरता नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। दूसरा डर है ये मेरी चीज न चली जाए, हाँ, मेरी वस्तु से मोह। तीसरा व्यक्ति से मोह, इसलिए डर लगता है, छोड़ना नहीं चाहते। चौथा किस कारण है मृत्यु का, भविष्य का अज्ञान मनुष्य को बहुत डराता है। जैसे कोई अंधेरे रास्ते पर जाता है ना, उसको कितना डर लगता है। नो लाइट ऑन द रोड, यू फील वेरी अफ्रेड, पता नहीं क्या होगा, गिर न जाऊं, खड्डा न हो, सो डार्क, नो लाइट। सो इग्नोरेंस ऑफ द फ्यूचर मेक्स वन फ्राइटेंड। अभी शिव बाबा ने हमें कहा, बच्चे भविष्य का डरो मत, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, वेरी ब्राइट। क्योंकि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में, तो डू आई हैव टू बी अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर? माई पास्ट लीड्स टू दिस प्रेजेंट। इफ माई प्रेजेंट इज वेरी गुड, आई हैव डन गुड कर्म, माई फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट, आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इसीलिए वो कबीर का एक दोहा है, बड़ा सुंदर है दोहा, कबीरा जब तुम पैदा हुए तब तुम रोए जग हंसा। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और सब परिवार वाले बड़े खुश होते, बच्चे वो हंसते, दे आर सो हैप्पी बिकॉज द चाइल्ड इज बॉर्न, द चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड इज क्राइंग एंड द फैमिली इज हैप्पी। तो कबीरा ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। एट द एंड इट शुड नॉट, दैट बर्थ एक्सपीरियंस शुड नॉट रिपीट एट द एंड ऑल्सो, इट शुड बी द ऑपोजिट। यू शुड बी हैप्पी एंड लेट अदर्स क्राई कि भाई इतना अच्छा आदमी वापस नहीं मिल सकेगा, दूसरा नहीं मिल सकेगा। But that birth experience should not repeat, that you cry and everybody is happy. Oh God, good, thank goodness. Good riddance to bad rubbish. अच्छा हुआ गया, जान छूटी। वो अनुभव न हो, वो खुश रहो और हम रोए कि हमने तो जीवन में कुछ भी नहीं किया, वेस्ट किया ये जीवन। तो श्वास, संकल्प, शक्ति सफल करो, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये घटता ही जा रहा है, उसको सफल करो। हम कभी कभी कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे बर्थडे पर, फिर कहेंगे फूंक मारो, दे से एक्सटिंग्विश द लाइट। तो क्योंकि वो 50 साल की उम्र, तो 50 मोमबत्तियां जलाएंगे और फूंक मारेंगे, एक 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 बत्ती गई, मना इस साल गया। भारत की संस्कृति में हम लोग ऐसे नहीं करते, फूक नहीं मारते, एक बार लाइट जली तो जलती रहेगी, है ना, वी नेवर एक्सटिंग्विश, दिस इज द डिफरेंस। व्हाई वी डोंट एक्सटिंग्विश? दिया जलाएंगे तो जलता ही रहेगा, फूक मार के थोड़ी बुझाते हैं, कभी बुझाते हैं? क्यों नहीं बुझाते? क्योंकि ये अविनाशी आत्मा का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। वो तो केवल शरीर को देखेंगे, 50 साल पूरे हो गए तो 50 मोमबत्ती तो फूंक दो और जल पूरा बुझा दो, 50 इयर्स गॉन, उसमें खुशी क्या है, वो तो आयु तो कम होती गई। तो क्या है कि मनुष्य की स्थिति, इसीलिए मनुष्य दुखी होता है, क्योंकि भविष्य का ज्ञान है, आई एम लूजिंग एवरीथिंग, आई एम फिनिश, इट्स गोइंग। परंतु जिसने अपने कर्म श्रेष्ठ किए वो कहेगा गोइंग नहीं, इट इज कमिंग, है ना, क्योंकि सत्कर्म आत्मा के साथ है। फिर पांचवी बात, कौन सा कारण है मृत्यु का डर, वो है अपने सजाओं का डर। जो पाप कर्म जीवन में किए ना, उसकी सजा मिलेगी। आत्मा को पता है कल्प पहले सजा भोगी है या कष्ट भोगते हैं तो सजा का डर लगता है। धर्मराज की सजाएं जानती है आत्मा, जैसे किसी को डर लगता है, कोई पाप किया है तो डर लगता है। मैंने चोरी की तो पुलिसमैन से डर लगेगा, अगर चोरी नहीं की तो डरने की जरूरत क्या है पुलिसमैन से। आई डोंट हैव टू बी फ्राइटेंड। पुलिसमैन क्या वो खुदा है क्या? वो तो इंसान ही है ना। हाँ, कोई चोरी की तो डर लगेगा। वो मिसाल है, कहानी आती है चोर के दाढ़ी में तिनका, सुनाइए कहानी। चोर के दाढ़ी में तिनका, सुनिए, नहीं सुनिए कहानी। वो दिखाते कि एक एक मियाँ जी जे मियाँ थे, वो नहीं दाढ़ी मियाँ थे, तो उनके उनके पांच नौकर थे, वो भी सब दाढ़ी वाले थे। तो दिखाते हैं कि एक दिन मियाँ जी के घर में चोरी हो गई। तो चोरी हो गई तो अभी कैसे, वो पांच में से एक ने तो उठाया है, अभी कैसे कहे कि तुमने उठाया है? तो उसने क्या किया, पांचों को ना एक लकड़ी दी। ये हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, पांचों को एक लकड़ी दी और कहा कि जिसने चोरी की होगी ना उसकी उसकी लकड़ी एक इंच कम हो जाएगी, सॉरी एक इंच बढ़ जाएगी, उसकी लकड़ी एक इंच बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंड? तो और कल सवेरे सब अपनी लकड़ी वापस लेके आना। अब जो चोर थे, जो जिन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने कहा हमने तो चोरी नहीं की है, पर जिसने चोरी की थी उसको आया कि हमारी लकड़ी एक इंच बढ़ जाएगी कल सुबह। तो उसने क्या किया, एक इंच काट दिया। तो जब काटा तो उस समय उसके दाढ़ी में तिनका रह गया दाढ़ी में तिनका रह गया। तो जब सवेरे बुलाया तो सबकी मेजरमेंट की, तो एक की जो एक इंच कम थी, बड़ी तो नहीं क्योंकि बढ़नी तो थी नहीं, बढ़ेगी कैसे लकड़ी, लेकिन एक इंच कम थी। और फिर उसका देख लिया, फिर उसकी दाढ़ी से परीक्षण किया तो उसके अंदर तिनका था। तो कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, लकड़ी का तिनका, ऐसे बताते कि तो चोर को डर लगता है। जिसने चोरी नहीं की तो डरो क्यों। हमारे में वो सिंधियों में एक कहावत है, सच तो बीठो नच, जो सच्चा आदमी है वो तो नाचता रहेगा, उसको डर किस बात। अंदर में जो भूल की है, चोरी की है, वो डर पैदा कराती, क्योंकि हम दूसरे से तो छिपाएंगे, अपने से कैसे छिपाएंगे? हमने किया है तो अपने से तो छिपा नहीं सकते ना, न खुद से छिपा सकते ना भगवान से छिपा सकते हैं, कैसे छिपाएंगे, वो भी सब जानता है। तो इसीलिए सजा का डर ये मनुष्य को मृत्यु से डराता है, क्योंकि धर्मराज की सजाएं बहुत कड़ी है, ये अभी हम नहीं समझ सकते। इसीलिए कहते हैं ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये पांचवी बात। और छठी बात लास्ट बताती हूं, छठी बात सिक्स्थ, किस लिए डर लगता है, लोनलीनेस। यू नो व्हेन समबडी इज डाइंग ही फील्स लोनली, लगता है बस मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। इसीलिए उनको मरते मनुष्य को क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, रिमेम्बर गॉड, रिमेम्बर गॉड, ईश्वर को याद करो, ईश्वर को याद करो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। लेकिन जिसने सारी उम्र ईश्वर को याद नहीं किया वो अंत में कर सकेगा, कर सकेगा? लाइक समवन हु हैज नॉट स्टडीड होल ईयर, एट द एंड वन डे बिफोर एग्जाम्स ही स्टार्ट्स, ही पिक्स अप द बुक, कैन ही स्टडी, ही सो नर्वस, द नर्वसनेस ओनली मेक्स हिम फॉरगेट व्हाट एवर ही नोज, इवन दैट ही विल फॉरगेट बिकॉज ही इज नर्वस। तो अंत में वो डर मनुष्य को ईश्वर से भी दूर कर देगा। पर इसके लिए ये राजयोग का अभ्यास है, मैं मेरा सच्चा साथी तो भगवान है। इसलिए कहते हैं जिसका साथी भगवान है उसको दुनिया की आंधी तूफान क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई राजयोग कम्स टू अवर एड। और शिव बाबा ने बताया कि मैं कौन हूँ, शिव बाबा कौन है, तो ये चिंतन, फिर उसमें लगन, उसमें मगन स्थिति, ये राजयोग है। तो घर भी जाना है, शुद्ध बनना है, पर उस नई सत्युगी दुनिया में भी आना, इसलिए सत्कर्म करना है। तो जीवन बुरी चीज नहीं है, इसलिए दूसरा लक्ष्य है जीवन मुक्ति, मानव देव बन जाए। तो ये लक्ष्य लेकर के यहां से जाना हा? तो आपको कल बताया ना कि 5 खोटे पैसे दान करके जाना, तैयार हो सभी? तो अभी हम यहाँ रखेंगे ये 5 या बॉक्सेस रखेंगे, तो आप कोई अपने कागज पर कुछ भी लिखो, जो आपकी वीकनेस है, कमजोरी है, कोई भूल है, कोई ऐसी कोई कड़ी आदत है जिससे आपको भी दुख मिलता है, दूसरों को भी दुख मिलता है, वो लिखो कि मैं आज ये क्रोध दान कर रहा हूं, क्रोध स्वाहा कर रहा हूं, मेरे अंदर किसी से दुश्मनी है, ये दुश्मनी स्वाहा कर रहा हूं, किसी से नफरत है, ये स्वाहा कर रहा हूं, ईर्ष्या है, वो स्वाहा कर रहा हूं, तो शिव बाबा ये कमजोरी में स्वाहा कर रहा हूं, तो शिव बाबा के यज्ञ में स्वाहा किया, आपको शक्ति मिलेगी, फिर वापस नहीं आएगी ये कमजोरी। तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो कुछ तो दान करते हैं ना, दान करते कि नहीं करते, जरूर दान करते। तिरुपति में जाओ, वो बाल ही काट के आ जाते, तिरुपति में क्या करते, सारे बाल खाली कर देते, सिर खाली कर दे, गंजा बन जाते। तो उसका भी आध्यात्मिक रहस्य, ये सिर के बाल माना बोझ, जो पापों का बोझ है ना, उसको हल्का करके जाते हैं। वो समझे बाल काट देंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा, तो ये बाल काटने से थोड़ी बोझ हल्का होता है, लेकिन प्रतिज्ञा करने से बोझ हल्का होता है, समर्पण होने से बोझ हल्का होता है, त्याग करने से बोझ हल्का होता है, अंदर में एक की लगन में मग्न होने से बोझ हल्का होता है, पापों का जो बोझ है वो उतरता है। तभी हम कुछ संकल्प करना, चिट्ठी पत्र में लिखना, लिखो 2 मिनट में आपको देती हूँ, आपके पास नोटबुक तो होगी ना, कागज होगा जरूर, नहीं है तो किसी से ले लो या बाद में लिखना, और इसके अंदर डालना, ठीक है। हर एक सोचना कि मैं क्या यहाँ दान करके जा रहा हूँ, तो यहाँ से आप बहुत बड़ी शक्ति भर के जाएंगे। आप लोग यहाँ आए हो तो जरूर सोचते होंगे कि ये इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है इनको, तो बताए शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन से आते हैं और हमें ज्ञान सुनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मुरली, तो ये मुरली है जो हम लोग सेवा केंद्रों पर रोज सुनते हैं, तो ज्ञान की ये मुरली है। तो एक है साकार मुरली जो शिव पिता ने ब्रह्मा पिता के माध्यम से उचारी, हर रोज की नई डेट की मुरली सुनते हैं, रिवाइज करते हैं जो शिव बाबा ने सुनाई थी। और दूसरी है अव्यक्त मुरलियां, वो भी आपको मनोहर दादी ने कुछ बताया था। तो शिव पिता और ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा, वो कैसे दादी गुलजार अपनी एक दादी है उनके तन में प्रवेश करते हैं और उनके मुख से उच्चारण करते हैं, और उनका अलग समय होता है, सीजन में होता है, नवंबर टू मार्च हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, और देश विदेश के बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। ये हॉल जो आपने देखा उस समय ये यूज होता है, एक एक प्रोग्राम में 20,000 भाई बहने होते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हो जरूर, लेकिन उसके लिए पहले कम से कम 1 साल 1 ईयर रेगुलर सेंटर पर जाओ, नियम जो इस विद्यालय के हैं उनका पालन करो, रेगुलर स्टडी करो, तो आप लोग भी फिर आ सकते हो। उस दिन आपको दादी जी ने कहा ना फिर आना, इसीलिए एक आना यहां से लेके जाना, एक आना, कौन सा एक आना, फिर से आना और रोज सेंटर पर एक एक बार जाना, वंस अ डे, वन आवर इन द सेंटर एवरी डे। तो ये यहां से प्रॉमिस करके जाओ और फिर नेक्स्ट ईयर कम बैक, है ना, ये दादी जी ने आपको कहा है। तो ये आपका घर है, अपने घर में आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ देके जाओ, है ना, कहते ना वो एक गीत है, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ देके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, तो ठीक है ना। तो इसीलिए अब संकल्प करना, 3 मिनट हम फिर से परमात्मा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।